लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि महिलाओं की गरिमा और अपार मूल्य को हर संस्कृति में मान्यता दी जाए तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों में उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत अपने मंगलवारीय कार्यक्रम में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लवदातो सी मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो की चर्चा सुन रहे हैं। हम लवदातो सी के तीसरे अध्याय पर्यावरणीय संकट में मानवीय जड़ की चर्चा करते हुए अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि मनुष्य से दुनिया के प्रति जिम्मेदारी महसूस करने की उम्मीद नहीं की जा सकती जब तक कि ज्ञान, इच्छा, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी में उनकी अद्वितीय क्षमताओं को मान्यता और महत्व नहीं दिया जाता हो। श्रोताओ, न ही एक गलत मानव केंद्रवाद पारस्परिक संबंधों के महत्व को तुच्छ रूप में देखे। यदि वर्तमान पारिस्थितिकी संकट अपनी नैतिकता, संस्कृति और आधुनिकता में आध्यात्मिकता के संकट की एक छोटी निशानी है तो हम सभी मूलभूत मानवीय संबंधों को ठीक किए बिना प्रकृति और पर्यावरण के साथ अपने संबंधों को ठीक करने का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ख्रिस्तीय विचार मानव को उस रूप में देखता है जो दूसरे जीवों के ऊपर अपने में एक विशेष सम्मान को वहन करता है। वह इस भांति अपने में हर व्यक्ति के लिए एक सम्मान जागृत करता और दूसरों को आदर की दृष्टि से देखता है। दूसरों के लिए हमारा खुला होना, जिन्हें हम उस व्यक्ति के रूप में देखते जो ज्ञान के योग्य है, प्रेम और वार्ता करने में सहभागी हो सकता है, मानव व्यक्ति के रूप में हमारी कुलीनता का स्रोत बनता है। सृजित की गई दुनिया के संग एक अच्छा संबंध हमसे इस बात की मांग करती है कि हम दूसरों के संग अपने सामाजिक आयाम के खुलेपन को कम ना करें और ना ही हममें दिव्यता के आयाम को जो ईश्वर के लिए खुला रहता है। पर्यावरण के साथ हमारा रिश्ता कभी भी दूसरों के साथ और ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते से अलग नहीं हो सकता, अन्यथा यह पारिस्थितिकी आवरण में लिपटे रोमांटिक व्यक्तित्ववाद से ज्यादा कुछ नहीं होगा जो हमें एक दम घोटू अशांता से बंद कर देगा। चूंकि सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, प्रकृति की सुरक्षा की चिंता गर्भपात को न्यायसंगत घोषित नहीं करता है। हम वास्तव में अन्य कमजोर प्राणियों के लिए चिंता के महत्व को कैसे सीख सकते हैं, चाहे वे कितने भी कष्टकारी या असुविधाजनक क्यों ना हो। यदि हम एक मानव भ्रूण की रक्षा करने में विफल रहते हैं, भले ही उसकी उपस्थिति असुविधाजनक हो और कठिनाइयां पैदा करती हों, एक अजन्म के लिए यदि व्यक्तिगत और सामाजिक संवेदनशीलता अस्वीकार्य होता तो दूसरी चीजें जो समाज में मूल्यवान हैं, उनकी स्वीकृति भी अपने में नष्ट हो जाती है। हमें हाल की शताब्दियों के झूठे तर्कों पर काबू पाने में सक्षम होने हेतु एक नया विश्लेषण विकसित करने की आवश्यकता है। ख्रिस्तीयता अपनी पहचान की निष्ठा में और सत्य के समृद्ध भंडार में जो इसे यीशु मसीह से प्राप्त है, बदलती ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ उपयोगी बातचीत में इन मुद्दों पर प्रकाश डालती है। ऐसा करते हुए यह हमारे लिए अपनी अनंत नवीनता को प्रकट करती है। श्रोताओं, एक गलत मानव केंद्रीयवाद हमें एक गलत जीवन शैली की ओर अग्रसर करता है। संत पापा फ्रांसिस अपने प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गाउडियम में इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमारे समय का एक विशिष्ट व्यावहारिक सापेक्षवाद हमारे लिए सैद्धांतिक सापेक्षवाद से भी अधिक खतरनाक है। जब मानव अपने को सारी चीजों के केंद्र बिंदु में स्थापित करता है तो वह अपने लिए शीघ्र मिलने वाले आराम को सबसे अधिक ध्यान में रखता है और बाकी अन्य चीजें सापेक्षित हो जाती हैं। अतः हमें यह देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि सर्वव्यापी तकनीकी प्रतिमान और असीमित मानव शक्ति के अनुसरण की स्थिति में एक सापेक्षतावाद का उदय हुआ है जो हर चीज को एक तरह अप्रासंगिक मानता है, जहां तक कि वह किसी को अपने तत्कालिक हितों की पूर्ति के लिए उपयोग ना करता हो। हम इन सारी चीजों में एक तर्क को पाते हैं जो विभिन्न तरह के व्यवहारों को एक दूसरे के लिए व्यक्त करता है, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण का विनाश और समाज में सड़न आती है। श्रोताओं, सापेक्षवाद की संस्कृति उस बुराई की भांति है जो हमें एक व्यक्ति को अपने मुनाफे हेतु उपयोग करने को अग्रसर करता है, जहां हम दूसरों को केवल वस्तुओं के रूप में उपयोग करते हैं। हम उन्हें अधिक कार्य करने को दबाव डालते हैं या उन्हें गुलाम बनाते हुए अधिक कर चुकाने को बाध्य करते हैं। हम इस विचार को बच्चों के यौन शोषण और बुजुर्गों के परित्याग हेतु अग्रसर होता पाते हैं, जिन्हें हम अपने लिए कुछ लाभ के रूप में नहीं देखते हैं। यह हमारे लिए उनके विचारों को भी व्यक्त करता है जो कहते हैं, आइए हम बाजार की अदृश्य शक्तियों को, अर्थव्यवस्था को विनियमित करने की अनुमति दें और समाज और प्रकृति पर उनके प्रभाव को संपार्श्विक क्षति के रूप में माने। वस्तुनिष्ठ सच्चाई की अनुपस्थिति में या अच्छे सिद्धांतों के अभाव, जहां केवल हम अपनी चाहतों और आवश्यकता की पूर्ति की चाह रखते हैं, मानव तस्करी, संगठित अपराध, नशीली दवाइयों के व्यापार, रक्त हीरे का व्यापार और लुप्त प्राय जातियों के फर पर क्या सीमाएं लगाई जा सकती हैं? क्या हम इनके सापेक्षित तर्कों का उपयोग गरीबों के शरीर के अंगों की खरीद बिक्री करने या उनका उपयोग प्रयोगशाला में करने हेतु या बच्चों को खत्म करने हेतु नहीं करते, क्योंकि वे वैसे नहीं हैं जैसे कि उनके माता पिता चाहते हैं? यह उपयोग करने और फेंके जाने का तर्क हमारे लिए कूड़ों को बहुतायत में उत्पन्न करता है, क्योंकि हमारी चाहतें अपने में विकृत हैं, जिसके फलस्वरूप जरूरत से ज्यादा हम अपने लिए उपभोग की चाह रखते हैं। हम अपने में यह ना सोचें कि राजनीतिक प्रयास या नियमों के बलपूर्ण निर्धारण द्वारा इन कार्यों को रोका जा सकता है जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जब संस्कृति ही अपने में भ्रष्ट हो गई है, वस्तुनिष्ठ सच्चाई और वैश्विक वैध सिद्धांतों का अनुपालन यदि नहीं किया जाता तो नियम कानूनों को केवल मनमाने तरीके से थोपे जाने या टाले जाने वाली बाधाओं के रूप में देखा जा सकता है। समग्र पारिस्थितिकी के प्रति कोई भी दृष्टिकोण जो परिभाषा के अनुरूप मनुष्य को बाहर नहीं करता है, हमसे श्रम के मूल्य को ध्यान में रखने की मांग करता है, जैसे कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने अपने विश्व पत्र लिबरम एक्सेंसेंस में उल्लेख किया है। धर्म ग्रंथ के अनुसार सृष्टि की व्याख्या में ईश्वर ने नर और नारी को वाटिका में रखा, जिसका निर्माण उन्होंने किया था। वे उसकी देख रेख हेतु नियुक्त नहीं किए गए थे, बल्कि उन्हें फलहित करने की जिम्मेदारी मिली थी। मेहनत के कार्य और शिल्पकार के रूप में हम विश्व के ताने बाने को बनाए रखते हैं। सृष्ट किए गए विश्व का विकास करना एक तरह से विवेकपूर्ण ढंग से इसकी देखरेख करना है। इसका अर्थ हमारे लिए यही होता है कि ईश्वर स्वयं हमें अपना साधन बनाते हैं, जिसके द्वारा वे उन चीजों की उपयोगिता को लाना चाहते हैं जिसे उन्होंने उन चीजों में निर्धारित किया है। ईश्वर ने धरती से औषधियों का निर्माण किया है और एक विवेकी मनुष्य उसका तिरस्कार नहीं करता है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज कातिक कलीसिया शहीद संत जॉर्ज का पर्व मनाती है। संत जॉर्ज शूरवीरों, सैनिकों, स्काउट्स और तीरंदाजों के संरक्षक माने जाते हैं। प्लेग, कुष्ठ रोग एवं जहरीले सांपों से बचने के लिए भी उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना की जाती है। संत जॉर्ज का जन्म 280 ईस्वी के आसपास कपाडोसिया के एक ख्रिस्ते परिवार में हुआ था। जब सम्राट ने 303 में ख्रिस्तों के खिलाफ उत्पीड़न का आदेश जारी किया तो जॉर्ज ने अपनी संपत्ति गरीबों को दे दी और स्वयं डियोक्लेशियन के सामने आदेश पत्र फाड़ दिया और ख्रिस्त में अपना विश्वास जताया। इसके लिए उन्हें भयंकर यातनाएं सहनी पड़ी और अंततः उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। हमारे वर्तमान संत पापा पोप फ्रांसिस का बपतिस्मा नाम जॉर्ज मारियो बेरगोलियो है, जो संत जॉर्ज को अपना संरक्षक मानते हैं। उन्होंने 23 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रभु से हमें जो प्यार मिलता है वह ऐसी शक्ति है जो हमारा जीवन बदल देती है और हमें प्रेम करने में सक्षम बनाती है। हम केवल इसलिए प्रेम कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया है, क्योंकि वे अपनी पौत्रता की आत्मा हमारे हृदयों में डालते हैं। उनका प्रेम हमें चंगा करता और बदल देता है। विश्व भर से मित्र और समर्थक पोप फ्रांसिस को उनके संरक्षक संत जॉर्ज के पर्व पर शुभकामनाएं एवं प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। शुभचिंतक पोप को अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं, साथ ही स्नेह और कृतज्ञता की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर पोप को अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दे रहे हैं। उनके साथ इटली के राष्ट्रपति सेर्जो मत्तारेल्ला ने पोप फ्रांसिस को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मेरी ओर से और इटली के लोगों की ओर से सबसे उत्कट एवं विश्वसनीय शुभकामनाएं ग्रहण करें, साथ ही हम आपके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए स्नेहपूर्ण कामनाएं करते हैं। दादा दादी और पोते पोतियां अप्रैल के कार्यक्रम के लिए पोप फ्रांसिस से मिलेंगे। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में आयोजकों ने इटली के फोंडाज़ियोने इत्ता ग्रांदे द्वारा प्रायोजित 27 अप्रैल के कार्यक्रम का अनावरण किया। कार्यक्रम दादा दादी और पोते पोतियों को एक साथ वैटिकन के संत पॉल सभागार में एकत्रित करेगा। ताकि आज के विश्व में बुजुर्गों की भूमिका और योगदान को बढ़ावा दिया जा सके। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार 27 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम का उद्देश्य है पीढ़ियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना। बुजुर्गों के फाउंडेशन के साथ लगभग 6000 दादा दादी, वरिष्ठ जन एवं पोते पोतियां पोप फ्रांसिस से मिलेंगे। यह आयोजन क्रिस्ती मूल्यों पर आधारित है जो बुजुर्गों के अधिकारों और समुदाय के संबंधित कर्तव्यों को उजागर करता एवं संवेदनशील बनाता है। जीवन के लिए गठित परमधम पीठ अकादमी के अध्यक्ष महाधर्म अध्यक्ष विंचेंसो पालिया कहते हैं कि इस पहल का उद्देश्य बुढ़ापे पर नए दृष्टिकोण पेश करना है। उन्होंने इसके समृद्धि पर जोर देते हुए बतलाया कि यह एक बोझ नहीं बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए एक संसाधन है। उन्होंने कहा कि तीसरी अवस्था द्वारा दी गई विरासत को फिर से खोजा जा सकता है और यही कारण है कि इस कार्यक्रम में दादा दादी और पोते पोतियों को शामिल किया जाएगा जिनके बीच एक विशेष सद्भाव, एकजुटता और स्नेहपूर्ण आयाम है जो अन्य पीढ़ियों के बीच हमेशा पैदा नहीं होता। महाधर्म अध्यक्ष पालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बुजुर्गों को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि वे अभी भी इतना कुछ दे सकते हैं। यह देखते हुए कि इटली में 14 मिलियन बुजुर्ग हैं, लेकिन उनसे संबंधित राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान देने की कमी है। महाधर्म अध्यक्ष पालिया ने कहा कि पोप फ्रांसिस ने अपने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान बुढ़ापे पर अपनी 19वीं धर्म शिक्षा में इस बात पर प्रकाश डाला था कि बुजुर्ग अवस्था पर विचार करना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही दादा दादी के लिए उत्सव आयोजित करने की भी बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इतालवी राज्य गैर आत्मनिर्भरता के संबंध में सुधारों पर 2023 के कानून 33 के साथ बुजुर्गों की देखभाल को पुनर्गठित करने के लिए प्रतिबद्ध है और आशा है कि अन्य राष्ट्र भी संबंधित मुद्दों पर उचित ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि दादा दादी अपने पोते पोतियों के साथ संबंधों के माध्यम से अंतर पीढ़ीगत गर्म जोशी, समझ और सद्भाव बनाने में मदद कर सकते हैं क्योंकि सभी प्रकार की पीढ़ियां एक दूसरे पर निर्भर होती हैं और एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। 27 अप्रैल के कार्यक्रम का आयोजन इटली के बुजुर्गों के फाउंडेशन ने किया है जो व्यक्ति को केंद्र में रखकर उनकी जरूरतों और कमजोरियों के लिए बुजुर्गों के मुद्दों से जुड़े मानवीय आयाम पर प्रकाश डालता है। फाउंडेशन संस्कृति एवं शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक समावेशन की दुनिया में बुजुर्गों के पक्ष में सामाजिक नीतियों को बढ़ावा देता है। फाउंडेशन के प्रतिनिधि मारियो माराजित्ती ने कहा, हम अपनी देखभाल के द्वारा अपनी दुनिया को मानवीय बनाने की कोशिश करना चाहते हैं ताकि हम अलगाव और अकेलेपन से प्रभावित लोगों को ठीक कर सकें। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय बढ़कर 2.433 ट्रिलियन डॉलर हो गया है जो बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय संघर्षों से प्रभावित है जिसमें अमेरिका, चीन और रूस जैसे शीर्ष देशों में सबसे अधिक व्यय हुआ है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में अमेरिका, चीन और रूस सहित शीर्ष 10 खर्च करने वाले देशों ने अपने सैन्य खर्च में वृद्धि की है। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्चकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखते हुए 916 बिलियन का आवंटन किया है। इस बीच चीन का आवंटन 296 डॉलर तक पहुंच गया है जबकि जापान और ताइवान जैसे पड़ोसी देशों ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है। भारत 2023 में वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा वैश्विक व्यय करने वाला देश बनकर उभरा है जो उसकी बढ़ती रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को रेखांकित करता है। पोप फ्रांसिस के पुर्तगाल की यात्रा से लौटे एक साल से भी कम समय में वैटिकन के लिए पुर्तगाल के राजदूतावास में एक विशेष सम्मेलन का आयोजन हुआ जो 50 साल पहले पुर्तगाल में लोकतंत्र की स्थापना की याद दिलाता है जिसका केंद्र बिंदु था कलीसिया और लोकतंत्र एवं नागरिक, विशेष रूप से कैथोलिक, किस तरह आम हित के लिए एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।